ಅಧಿಗಳ ಶಬ್ದ ಗಣೌಗ ಪ್ರಕ್ಷಾಳಿತ ಸಕಲ ಭೂತಲ ಮಲ ಕಲಂಕ ಮುನಿಭಿರುಪಾಸಿತ ತೀರ್ಥ ಸರಸ್ವತಿ ಹರತು ನೋ ದುರಿತಾನ್ ಅಜ್ಞಾಂತಿಮಿರಾಂಧಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಿ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಪರಮ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಪರಂ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಸಕಲ ಕಲುಷ ವಿಧ್ವಂಸಕಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಪರಿವರ್ಧಕಂ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಕಂ ಭವೆ ಜೀವ ಮನಃ ಪ್ರತಿಬೋಧಕಾರಕಮಿದಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಂದಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿಕಾ ನಾಮಧೇಯಂ. ಅಸ್ಯ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರಃ ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇವಾಃ. ತದುತ್ತರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾರಃ ಶ್ರೀ ಗಣಧರ ದೇವಾಃ. ತೇಷಾಂ ವಚೋನುಸಾರಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಂದ್ಯಾಚಾರ್ಯೇಣ ವಿರಚಿತಂ. ಶ್ರೋತಾರಃ ಸಾವಧಾನತಯಾ ಶೃಣವಂತು. ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವೀರೋ ಮಂಗಳಂ ಗೌತಮೋ ಗಣೇ ಮಂಗಳಂ ಕುಂದಕುಂದಾದ್ಯೋ ಜೈನ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಳಂ. ಬಂದಾಯ ಜಲಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀ ಜಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಪದ್ಮನಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ರಚಿತ ಯೇ ಪದ್ಮನಂದಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಕಾ ಗ್ರಂಥ ಹೇ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮೇ ಸಮಯ ಸಾರ ಮೂಲಾಚಾರ ಇನ್ ಗ್ರಂಥೋ ಕಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಚಲತಾ ಹೇ. ಔರ್ ಅಭಿ ಕುಛ ದಿನೋ ಸೇ ಪದ್ಮನಂದಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಕಾ ಗ್ರಂಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಉಸ್ ಮೇ ಆಜ್ ಹೇ ರತ್ನತ್ರಯ ಧರ್ಮ. ಮುನಿ ಧರ್ಮ ಕಾ ವರ್ಣನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ರತ್ನತ್ರಯ ಧರ್ಮ ಕಾ ವರ್ಣನ ಕಿಯಾ ಹೇ. ತತ್ವಾರ್ಥಾಪ್ತ ತಪೋವ್ರತಾಂ ಯತಿವರಃ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ಮಾಹುರ್ದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜಾನದನು ನಮ ಪ್ರತಿಹತಂ ಸ್ವಾರ್ಥಾವಸಂದೇಹಿವತ್ ಚಾರಿತ್ರಂ ವಿರತಿ ಪ್ರಮಾದ ವಿಲಸತ್ ಕರ್ಮಾಶ್ರವಾದ್ಯೋಗಿನ ಮೇ ತನ್ಮುಕ್ತಿ ಪಥಸ್ತ್ರಯಂ ಚ ಪರಮೋ ಧರ್ಮೋ ಭವಚ್ಛೇದಕಃ. ಗಣಧರಾದಿ ದೇವ್ ಜೀವಾದಿ ಪದಾರ್ಥ ತಥಾ ಆಪ್ತ ಔರ್ ಗುರುವೋ ಪರ್ ಶ್ರದ್ಧಾನ್ ಕರ್ನೆ ಕೋ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಕಹತಿ ಹೈ ತಥಾ ಜಿಸ್ಮೇ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಬಾಧಾ ನಹೀ ಹೈ ಜೋ ಸಂಶಯ ರಹಿತ ತಥಾ ಪೂರ್ಣ ಹೈ ಐಸೆ ಜ್ಞಾನ ಕೋ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ತಥಾ ಪ್ರಮಾದ ಸಹಿತ ಕರ್ಮೋ ಕೆ ಆಗಮನ್ ಕೆ ರುಕ್ ಜಾನೆ ಕೋ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಕಹತೆ ಹೈ ತಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ ಹಿ ಮುಕ್ತಿ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಹೈ ತಥಾ ಸಂಸಾರ ಕೋ ನಾಶ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಇಸ್ ಏಕ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ತೀನೋ ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಕೋ ಕಹ ದಿಯಾ ಜೋ ಕಿ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಕಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ. ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಹೈ ರತ್ನತ್ರಯ ಮಾಲೆ ಮನೆ ತೀನ್ ರತನ್ ಔರ್ ತೀನ್ ರತನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಲೌಕಿಕ ಭೌತಿಕ ರತನ್ ಹೈ ಹೀರಾ ಮೋತಿ ಮಾಣಿಕ್ ವಗೈರೆ. ಔರ್ ಯಹಾ ರತ್ನತ್ರಯ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ. ಜಬ್ ಹಮ್ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಕಿ ಜೊ ಪಹಲಿ ಟೀಕಾ ಹೈ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ರಚಿತ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವ್ ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಜೈಸೆ ಕೋಯಿ ಏಕ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಶ್ನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಭಗವನ್ ಕಿಂ ನು ಆತ್ಮನಾ ಖಲು ಹಿತಂ ಹೇ ಭಗವನ್ ಆತ್ಮ ಕಾ ಹಿತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ತಬ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಇನ್ ಸೂತ್ರೋ ಕಾ ಅವತಾರ ಕಿಯಾ ಐಸಿ ಭಾಷಾ ಕಾ ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಭಾಷಾ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನೆ ಕಹಾ ಔರ್ ಕಹಾ ಕಿ ಅವಾಕ್ ವಿಸರ್ಗಂ ವಪುಸಾ ಏವ್ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಂ ನಿರೂಪಯಂತಂ ಮೂರ್ತಮೇವ್. ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಸೇ ಜೋ ಬಿನಾ ಬೋಲೆ ಹೀ ಜೋ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ಕರಾ ರಹೆ ಹೈ ಐಸೆ ಹಮಾರೆ ನಿರ್ಗ್ರಂಥ ದಿಗಂಬರ್ ಮುನಿ ಯಹಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಕೆ ಜೀವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕ ಹೈ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಮೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಸೂತ್ರೋ ಕಾ ಅವತಾರ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕಿಯಾ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಜ್ಞಾನ್ ಚಾರಿತ್ರಾಣಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ. ಅವ್ ಸಮಝೋ ಯೇ ಸಾರೇ ಗ್ರಂಥ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಹೀ ಕೆ ಫಿರ್ ಆಧಾರ ಪರ್ ಆಗೆ ಜಾ ಕರ್ ಕೆ ಲಿಖೆ ಗಯೆ ಉನ್ಹೀ ಕೆ ಸಾರ ರೂಪ ಮೇ हाँ पहुंच गए। तो इस एक श्लोक के अंदर रत्नत्रय धर्म के अध्याय में प्रथम श्लोक में ही तीनों रत्न के स्वरूप को कह दिया और यही मुक्ति का मार्ग है, संसार को नाश करने वाला परम धर्म है। अब आगे मालिनी छंद में कहते हैं, हृदय भूद्रगीकम बीज मुत्तत्व शंका प्रभृति गुण सदंभा सारिणी सिक्त मुच्छही भावदवगम शाकस चारु चारित्र पुष्प तरुरमृत फलेन प्रीणयत्याशु भव्यम। आचार्य कहते हैं कि अंतःकरण रूपी पृथ्वी में बोया हुआ तथा निशंकित आदि आठ गुण रूपी उत्तम जल की भरी हुई नलियों से सींचा हुआ सम्यक दर्शन रूपी बीज, सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी तथा चारित्र रूपी पुष्पकर सहित वृक्ष रूप में परिणत होकर शीघ्र ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट कर देता है। एक एक अक्षर बहुत प्रांजल शब्दों में आचार्य देव ने श्लोक बनाए हैं। हृदय भूई, हृदय अंतःकरण रूपी भूमि माने पृथ्वी में जो बीज मुक्तम बीज जो बोया गया है उसके लिए बताया कि वो बीज जब बो दिया गया तो निसंकित आदि आठ गुण, निसंकित आदि आठ कौन से, निसंकित निकांक्षित निर स्थितिकरण और वात्सल्य, ये ना निसंकित आदि आठ गुणों के द्वारा जो उत्तम जल की भरी को बताया, ये उत्तम जल की भरी हुई नलियां हैं, इनसे सींचा गया जो सम्यक दर्शन है तब पूर्ण हो गया। जब इन आठ अंगों से सहित सम्यक दर्शन होता है तो वही सम्यक दर्शन निर्दोष सम्यक दर्शन पूर्ण सम्यक दर्शन कहा जाता है। और सम्यक ज्ञान रूपी शाखाओं का धारी, जब तुलना करते हैं उपमा देते हैं तो बड़े सौंदर्य का प्रतीक होता है। सम्यक ज्ञान को वृक्ष की शाखाएं बताई हैं और उन शाखाओं से जब तक वृक्ष में शाखाएं नहीं होती हैं तो वृक्ष शोभायमान नहीं हुआ होता है। कहते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, उसकी शाखाएं नहीं दिखती हैं, लंबा लंबा ठूंठ जैसा खड़ा होता है और फल भी बहुत दूर होते हैं। इसलिए फले फूले वृक्ष की उपमा देते हुए कहा कि जिनकी सम्यक ज्ञान रूपी शाखाएं हैं और चारित्र रूपी उसके अंदर पुष्प खिले हैं, है ना। अपना अपन भी क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अपना चारित्र निर्दोष है, यही हमारे लिए पुष्प हैं और यही फल बन जाते हैं। जब पुण्य का घड़ा भरता है तो पुण्य फल अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। तो चारित्र रूपी पुष्प से सहित वृक्ष रूप से परिणत होकर शीघ्र ही भव्य जीवों को मोक्ष रूपी फल से संतुष्ट करता है। आगे और भी आचार्य देव रत्नत्रय की महिमा को दिखाते हैं। दृगवगम चरित्रालंकृतः सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु साधन्यथात्वे कदाचित् स्फुटमवगत मार्गो याति मन्दोऽपि गच्छन् न विमत पदमन्यो नैव तूर्णोऽपि जन्तु। अब इन बातों को जूम चैनल में उपस्थित जो भाई बहन है जिज्ञासु वो भी सुन रहे हैं, लेकिन आप ये समझना ये रत्नत्रय पूर्ण रूप से संतों में ही घटित होता है। आप सब भी जब अणुव्रति बन जाते हैं, अणुव्रतों को धारण कर लेते हैं तो समझो एक देश रत्नत्रय आंशिक रत्नत्रय की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। इसलिए आप सब उपस्थित भाई बहनों को भी ध्यान देना है कि रत्नत्रय संतों में ही चरितार्थ होता है और इसका आंशिक रूप में परिपालन आप सब भी कर सकते हैं। जिसको मार्ग मालूम है इसका अर्थ कह रहे हैं इस श्लोक का, दृगवगम चरित्रालंकृतः सिद्धि पात्रम लघुरपि न गुरु साधन्यथात्वे कदाचित्। कितनी सुंदर बात कही है कि जिसको रास्ता मालूम है ऐसा मनुष्य धीरे धीरे भी चले तो भी एक दिन अभिमत अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। कोई लोकल गाड़ी भी रही, एकदम एक्सप्रेस भी नहीं है, लेकिन रास्ते पर पटरी पर चल रही है, एक न एक दिन अपने लक्ष्य पर चलने वाले गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को पहुंचा देती है। उसी प्रकार से कहा कि मनुष्य अगर धीरे धीरे भी चलता है लेकिन सच्चा मार्ग उसको मालूम है, तो एक दिन जैसे अभिमत मार्ग पर पहुंच जाता है। किंतु जिसको मार्ग ही नहीं मालूम, वह चाहे कितनी जल्दी चले, चाहे कोई सी एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ जावे, जाना है कलकत्ता, बैठ गए बंबई की गाड़ी में तो रास्ता मालूम नहीं, मतलब तो चाहे जितनी जल्दी चल लें तो भी वह अपने अभिमत स्थान पर नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जो मुनि तप आदि का तो बहुत थोड़ा करने वाला है, किंतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धारी है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किंतु जो तप आदि का तो बहुत करने वाला है परंतु सम्यक दर्शन आदि का धारी नहीं है, वह कितना भी प्रयत्न करे तो भी मोक्ष को नहीं पा सकता। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सम्यक दर्शन की सबसे अधिक महिमा समझनी चाहिए। दर्शन माने देखना, दृष्ट धातु से देखने अर्थ में सम्यक दर्शन बना। तो अब एक तो आँखों से देखना और एक आत्मा की दृष्टि जो होती है वह सम्यक दृष्टि जब बन जाती है तो अपना ज्ञान, अपना चारित्र सम्यक चारित्र बन जाता है। तो इसके अंदर ये बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बात है कि हम चाहे धीरे धीरे चलें, भाई देखो पंचम काल है, सब बहुत तेज स्पीड में, माने जरूरी नहीं है कि उत्तर गुणों का पालन कर लें। सबसे पहले कहा गया है कि मूल गुणों का पालन करें। माता जी बताती हैं कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री वीर सागर महाराज कहते थे कि मध्यम वृत्ति से चलो। कभी भी जीवन में जो मध्यम वृत्ति से चलते हैं तो वो कभी भी पतित नहीं होते, और एकदम भागे मैराथन दौड़ में अब कमजोर हैं तो कहीं भी गिर जाएंगे, और मध्यम वृत्ति से चल रहे हैं तो गिरेंगे भी नहीं, चोट भी नहीं लगेगी, और चलो फर्स्ट नहीं आएंगे तो सेकंड, थर्ड या अपने गंतव्य तक तो पहुंच ही जाएंगे। इस प्रकार से ही कहा गया है कि मार्ग पर चलो, चाहे धीरे चलो, ऐसे धीरे या जल्दी चलने वाले दोनों प्रकार के मुनिजन या त्यागी जन या विद्यार्थी या जो अभ्यास कर रहे हैं मोक्ष मार्ग पर चलने का, तो दोनों प्रकार के होते हैं। कोई तो बेचारे जो है नहीं पाल पाते तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और कोई धीरे धीरे करके कभी ना कभी मोक्ष में पहुंचने का आश्रय ले ही लेते हैं। तो आजकल भी इसीलिए पंचम काल में कहा कि भाई मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। जब साक्षात मोक्ष था तो भी हारिकाओं को स्त्रीलिंग से कभी मोक्ष दिगंबर जैन आगम के अंदर माना ही नहीं गया। उपचार महाव्रति होते हुए भी गुणस्थान पांचवा ही माना गया, और पंचम गुणस्थान रहते हुए भी वे श्राविकाओं की कोटि में ना रहकर हारिकाओं के व्रतों का पालन करते हैं। तो रत्नत्रय धर्म का वर्णन सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते हमें भी ये समझना है कि हम भी रत्नत्रय के मार्ग पर तो देखो चल रहे हैं, भले ही धीरे धीरे चल रहे हैं। आगे उसमें कहते हैं, वन शिख निमृतोंधा संचरन बाढ़ मंग्री द्वित विकल मूर्ति वीक्षमाणो पिखंजा अपि सनयन पादो श्रद्धानश्च तस्मा दृगवगम चरित्रय संयुतैरेव सिद्धि। इसमें कहा कि वन शिखिनी मृतोंधा, वन में अग्नि लगने पर उस वन में रहने वाला अंधा तो देख ना सका, इसलिए दौड़ता हुआ भी मर गया कि उसे पता ही नहीं बेचारा, तो आग की तरफ ही भागा जा रहा क्योंकि उसे दिखती नहीं अग्नि किधर है। और दोनों चरणों में का लूला लगी हुई अग्नि को देखता हुआ भी दौड़ न सकने के कारण तत्काल ही भस्म हो जाता है, और पैर सहित भी, आंख और पैर सहित भी आलसी जीव इसलिए मर गया कि उसको अग्नि लगने का श्रद्धान ही नहीं हुआ और अपना आलसी पड़ा रहा और वो मर गया। अंध पंगु अर आलसी, रत्नत्रय की पूजा में कहते हैं ना कि इस प्रकार से तीनों की स्थिति होती है। तो आचार्य उपदेश देते हैं कि केवल सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान और केवल सम्यक चारित्र मोक्ष के लिए कारण नहीं है, किंतु तीनों मिले हुए ही हैं। यद्यपि अंधे को अग्नि का श्रद्धान तथा आचरण था तो भी देखना रूप ज्ञान न होने के कारण वह मर गया, तथा पंगु को ज्ञान श्रद्धान होने पर दौड़ना रूप आचरण नहीं था इसलिए भस्म हो गया। आलसी को ज्ञान भी था और आचरण भी था किंतु श्रद्धान नहीं था। आलस को यहाँ पर श्रद्धान की उपमा दी, अश्रद्धान था, श्रद्धान नहीं था तो इसलिए वो जलकर मर गया। यदि तीनों के पास तीनों चीजें होती तो उनमें से एक भी नहीं मरता, इसलिए जुदे जुदे सम्यक दर्शन आदि केवल दुख के ही देने वाले हैं। तीनों मिले हुए ही कल्याण को करने वाले हैं, इसलिए भव्य जीवों को तीनों का ही आराधन करना चाहिए। ये सब अपन लोग पढ़ते ही रहते हैं, तत्वार सूत्र की टीकाओं में तमाम गुरुओं के मुख से सुनते ही रहते हैं कि भाई आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष का मार्ग है, इसीलिए अपन लोग चल रहे हैं। वरना आजकल कोमल कोमल काया वाले लोगों को मोक्ष मार्ग में चलने की आवश्यकता क्या थी, कठिनता तो है चलने में, सब ऋतुओं को सहन करने में है, लेकिन आज कम से कम इस पंचम काल के अंदर भी इतनी बड़ी संख्या में हमें साधु साध्वी के दर्शन हो रहे हैं, ये समझो आचार्यों का अपने ऊपर उपकार मानना है। अगर वो ये नहीं कह गए होते कि जब तिरियन सुद्धा पा झाए विलहाय इंदत्तम लोयंत्य देवत्तम तत्थ चुदा निबुदिम जंती, अगर ये बात नहीं कहा होता कि आज भी हम एक निश्चयाभासी हैं जो कहते हैं सांप देखते देखते भी आज तो मुनि होते ही नहीं। अब विचारों के कैसा मिथ्यात्व तो कर्म का उदय रहता है कि जिस चीज को हम सामने देख रहते हैं और उसी को नकार देते हैं, और जो नहीं दिखते हैं उनका अनुकरण करते हैं, उनकी दुहाई देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये क्या है, ये मिथ्यात्व बंध का कारण है और पत्थर की नाव के समान है। खुद भी बेचारे संसार में डूब रहे हैं और उनका आश्रय लेने वाले वो पत्थर की नाव पे बैठकर वो भी डूब जाते हैं। और अगर आचार्य के वचनों पर श्रद्धान करें कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनि, सच्ची आरिका, सच्चे श्रावक और सच्ची श्राविकाएं रहेंगे, इस बात का हमें श्रद्धान करना है। अब क्या है, हमारे आप में से ही सब रहेंगे। अभी अपन लोग विद्यार्थी हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पता नहीं अभ्यास में कौन परिपक्व हो जाए और उस मार्ग तक पहुंच करके पंचम काल के अंत तक का दिग्दर्शन करें, और पंचम काल के बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। आगे तो जब आगे फिर से चतुर्थ काल आएगा, माने अब जब उत्सर्पिणी काल चलेगा तो पहले छठा काल, फिर पंचम काल, फिर चतुर्थ काल आएगा। उस चतुर्थ काल में भी 24 तीर्थंकर भगवान होंगे और तब तक महावीर का शासन ही पंचम काल के अंत तक कहा जाएगा। आगे तो कौन शासन वासन की कोई बात ही नहीं रहेगी। और इसी अयोध्या के अंदर ही 24 भगवान जन्म लेंगे, ये विशेष बात जानने की है। अयोध्या में आने के बाद ये इतिहास कि हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण यहाँ 5 तीर्थंकरों ने ही जन्म लिया, जबकि जन्म लेना चाहिए था 24 भगवान को। तो जब यहाँ 5 भगवान ने जन्म लिया और तीर्थंकरों ने अन्यत्र अन्यत्र जन्म ले लिया तो भगवान की जन्म भूमियाँ 16 हो गई, 16 जन्म भूमियाँ हैं मात्र, और एक शाश्वत जन्म भूमि अयोध्या ही है। आगे आने वाले समस्त तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेंगे। असंख्यात उत्सर्पणी और असर्पणी काल बीत जाने के बाद एक हुंडाव सर्पणी काल आता है, इसलिए वो आया है, हम सब उसी में जन्मे हैं। लेकिन वो हुंडाव सर्पणी काल भी हमारे लिए तो उत्सर्पणी काल या चौथा काल बन सकता है अगर हम अपने सम्यक दर्शन में दृढ़ हैं। तो आज का भी काल हमारे लिए महान हो सकता है, क्योंकि ये समझ लो था भूत भी महान होगा, भविष्य भी महान, यदि हमारा ठीक है वर्तमान। वर्तमान में हमें देखना है क्या हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। आज इतना दुर्लभ चारित्र अपने को प्राप्त हुआ है, ऐसे दुर्लभ चारित्र को हमें उसकी कीमत करते हुए, उसका मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये हमने थोड़ा सा जो प्रतिदिन का स्वाध्याय चल रहा है, उस स्वाध्याय में आप सब लोगों को भी सम्मिलित करके ये स्वाध्याय किया है। आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी के इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इन अमृतमयी वचनों से अपनी आत्मा अभी सिंचित हुई, और हम सब ने इतनी देर स्वाध्याय करके ज्ञानावरण कर्म की निर्जरा की, और जितना भी आंशिक रूप में भी मति और शुद्ध ज्ञान जो हमें मिला है ये वृद्धिंगत हो, और एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कराने में कारण बने, इसी भावना के साथ इस स्वाध्याय को संपन्न करके और गुरु भक्ति की ओर, पूजा की ओर चलते हैं।